ला पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 20। ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, नम्यूणनन्तजिणं, अनन्तनाणेन दिट्ठसौवट्ठं, कम्मपदेशविहत्तिं वोच्चामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। छठवीं पुस्तक जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें भी हम पृष्ठ संख्या 145 पर आ गए, 145। लेक्चर नंबर 20, लेक्चर 20, पेज नंबर 145, लेक्चर नंबर 20। अभी यहाँ क्षपित कर्मांश की बात चल रही है। जघन्य प्रदेश सत्कर्म मिथ्यात्व प्रकृति में किसके होता है? उसकी बात यहाँ चल रही है। तो उसमें हमने देखा था क्षपित कर्मांशी के रूप से आया हुआ दर्शन मोनी की क्षपणा करने वाला, जो उसके स्थिति कांडक घात अंतिम हो जाता है मिथ्यात्व में से समय मिथ्यात्व रूप, और जब अंतिम जो उदयावली प्रमाण जो निषेक है, उदयावली में एक समय कम इतने निषेक है, और वो जो अंतिम निषेक बाकी रहता है, तब उसका जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है। अब ये जो वहाँ वो पूछा है तो उसमें क्या क्या है, तो मूल ओरिजिनल उसमें जिसको प्रकृति विभक्ति कहते हैं, प्रकृति गोपुच्छा, प्रकृति विभक्ति नहीं, प्रकृति गोपुच्छा कहते हैं, और विकृति गोपुच्छा है ने स्थिति कांडक घात से आया हुआ एक्स्ट्रा माल उसमें है, और गुणश्रेणी रूप से दिया हुआ जो नीचे गलकर आया हुआ माल भी है, अपूर्वकरण की गुणश्रेणी भी उसमें आती है, और अनिवृत्तिकरण के गुणश्रेणी के काल में दिया हुआ भी द्रव्य उसमें है। तो उसमें से प्रकृति और विकृति गोपुच्छा की अपनी चर्चा चल रही है। प्रकृति गोपुच्छा है ने ओरिजिनल जो है निषेक रचना जब बंधी थी, उसमें से अपकर्षण होता है, उत्कर्षण होता है, संक्रमण होता है, फिर भी उसको प्रकृति गोपुच्छा ही कहते हैं। विकृति गोपुच्छा इसको कहते हैं जब स्थिति कांडक घात होता है और अंतिम फाली गिरती है तो बहुत सारा माल उसमें आता है, तो उसका बदल जाता है। उसके लिए उदाहरण दिया था रोग का, जैसे कोई हाथ है और कुछ रोग हो गया तो वो सूजन आ जाए, स्वेलिंग आती है, ऐसे ही यहाँ विकृति गोपुच्छा में बहुत अधिक माल वहाँ मिल जाता है। ये बात यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी। 145 पृष्ठ पर आते हैं, यहाँ नीचे की शंका, नीचे से दूसरी लाइन, यह राशि गुण संक्रम भागार से असंख्यात गुणी है, यह किस प्रमाण से जाना? देखो, जो भागार बड़ा होता है उसके परमाणु कम हो गए, तो यहाँ कहते गुण संक्रमण भागार छोटा है और ये संख्या असंख्यात गुणी है। किसके लिए बात, कौन सी राशि की बात चल रही है, तो हम जरा देखते हैं। हाँ, ये बात यहाँ से चल रही थी 142 पृष्ठ पर, कि यह विकृति गोपुच्छा प्रकृति गोपुच्छा से असंख्यात गुणी है, 140 नंबर का पॉइंट। तो उसके लिए युक्ति नीचे बताई है कि 266 सागर काल तक भ्रमण करके उसके बाद दर्शन मुनि की क्षपणा करने वाला जो जीव है प्रारंभ करता है, तो पहले 3 करण परिणाम हो गए उसके, तो अदब प्रवृत्ति के बाद अपूर्व करण को जब प्रारंभ करता है तो वहां गुण संक्रमण चालू हो जाता है उसका। तो मिथ्यात्व का द्रव्य है वो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में दोनों में संक्रांत हो जाता है, संक्रमित होता है। अब वहां गुणसंक्रम बाघार के द्वारा प्रकृति गोपुच्छा में भाग देने पर लब्ध एक भाग प्रमाण द्रव्य पर प्रकृति रूप से संक्रांत होता है। प्रत्येक निषेक की बात है, परंतु हम यहाँ एक निषेक की बात उठाई है। जितना द्रव्य है प्रकृति गोपुच्छा रूप से, उसमें से कितना द्रव्य संक्रमित होता है, तो गुण संक्रमण भागार के भाग देने पर जो संख्या आएगी उतना द्रव्य पर प्रकृति रूप है सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप परिणमित होता है। इस प्रकार अपूर्वकरण के प्रथम स्थिति कांडक की द्विचरम फाली पर्यंत गुण संक्रम के द्वारा प्रकृति गोपुच्छा का व्यय ही होता है, क्योंकि अपकर्षण के द्वारा पतन को प्राप्त होने वाला द्रव्य संक्रमण को प्राप्त होने वाले द्रव्य से असंख्यात गुणाहीन होता है। संक्रमण होने वाला द्रव्य ज्यादा है वहां गुण संक्रमण वाली बात है, और अपकर्षण वाला नीचे आने वाला द्रव्य थोड़ा है। उसके लिए फिर उन्होंने पूछा था, ये कैसे जाना कि अपकर्षण होने वाला द्रव्य कम है संक्रमित होने वाला द्रव्य ज्यादा है, ये कैसे जाना? तो उसके अपने अपने भागार से जानेंगे। उसके लिए यहाँ समाधान दिया था 143 पृष्ठ पर कि गुणसंक्रम भागार से अपकर्षण उत्कर्षण भागार असंख्यात गुणा है, भागार असंख्यात गुणा है, तो वो संख्या जो है उसकी असंख्यात गुणाहीन होगी। भागार जहाँ बड़ा है और भाज्य राशि वही है, तो ये जो संख्या आने वाली है वो अपकर्षित वाला द्रव्य कम होगा और गुण संक्रमित होने वाला द्रव्य ज्यादा है। अब हम आगे पढ़ते 141, थोड़ा वहां से पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ प्रथम स्थिति कांडक की अंतिम फाली का पतन होते समय, यानी वहां जो स्थिति कांडक शुरू हो गए अपूर्वकरण से, तो वहां गुण संक्रमण भी हो रहा है, अपकर्षण तो चल ही रहा है, स्थिति कांडक घात भी होते हैं। तो पहले स्थिति कांडक की अंतिम फाली का पतन होते समय अधिकृत गोपुच्छा, अधिकृत यानी जो ओरिजिनल जो है प्रकृति गोपुच्छा, उसमें जो द्रव्य पतित होता है उसे विकृति गोपुच्छा कहते हैं। ये विकृति गोपुच्छा स्थिति कांडक के अंतिम फाली से शुरू हो जाता है, क्योंकि अपकर्षण उत्कर्षण के बिना स्थिति कांडक घात के द्वारा, स्थिति कांडक के द्वारा आए हुए द्रव्य का ही यहाँ ग्रहण किया है, अपकर्षित द्रव्य को यहाँ नहीं लिया है। अपकर्षित द्रव्य को तो ओरिजिनल में ही गिनेंगे, अपकर्षित उत्कर्षित जो जहाँ होता है उस द्रव्य को प्रकृति गोपुच्छा में ही गिनते हैं। विकृति गोपुच्छा कब कहेंगे? जब स्थिति कांडक की अंतिम फाली खिरेगी तब।
प्रथम कांडक की,
प्रथम कांडक से शुरू ही होता है,
कांडक की अंतिम फाली जब गिरेगी तब
वहां से शुरू हो जाए। हाँ, ये तो निरंतर असंख्य, वो तो हजारों बार स्थिति कांडक घात होते रहेंगे। हाँ, उसका बड़ा है, गुण संक्रमण की अपेक्षा बड़ा है। अब यहाँ जो स्थिति कांडक होता है तो अनेक निषेक के निषेक आते हैं। पहले क्या होता है अपकर्षण में, उसमें से थोड़ा माल नीचे गिरता था जैसे धूल झटक गई, अब ये तो पूरे के निषेक नीचे आ गए, तो नीचे में जो माल दिया जाएगा वो बहुत एक्स्ट्रा होगा। फाली होती है परंतु सभी फाली मान लेते 10 फाली होगी, तो पहली फाली में असंख्यातवा भाग, फिर असंख्यातवा भाग, पहले से दूसरे असंख्यात गुना है, फिर भी पहले से 9 सक की टोटल करेंगे उससे असंख्यात गुना अंतिम फाली में है, तो अंतिम फाली में हमेशा ही द्रव्य बहुत ज्यादा होगा। जब अंतिम फाली खिरेगी तब जहां जो द्रव्य दिया जाएगा उसको विकृति गोपुच्छा कहेंगे। अभी उसका प्रमाण यहाँ करते, देखो ये कल पढ़ा था परंतु फिर थोड़ा, क्योंकि किस राशि की बात चल रही हो आगे चल के हमें ख्याल में आएगा। एक केंद्रीय संबंधी एक समय प्रबद्ध को डेढ़ गुणानी से गुणा करके स्थापित करो। हमेशा कोई भी समय प्रबद्ध को डेढ़ गुणा करेंगे तो संचित द्रव्य आता है। उसके नीचे दो छासर सागर के भीतर की नाना गुणानी शलाकाओं का विरलन करके और उन विरलित अंकों को द्विगुणित करके परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो उसे अंतर्मूल से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागार से गुणा करके स्थापित करो। अपकर्षण उत्कर्षण भागार को अंतर्मूल से भाग देना, अंतर्मूल से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागार बाद में गुणा करना, पहले अपकर्षण उत्कर्षण भागार को अंतर्मूल से भाग देना और जो संख्या आएगी उसको उस अन्योन्य अभ्यास राशि को गुणा करना।
नहीं नहीं, यहाँ पे अन्योन्य अभ्यास राशि जो आई उसको अंतर्भूत से भाजित करके,
नहीं ये अपकर्षण उत्कर्षण भागार को अंतर्मूल से भाजित उसे लिखा ना, उसे उसे के बाद कॉमा करो। किससे गुणा करना, अंतर्मूल से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागार से, या फिर कॉमा देना। देखो पहले हमें टोटल द्रव्य हमने निकाला डेढ़ गुणानी से गुणित समय प्रबद्ध। अभी दूसरी राशि कौन सी निकाली है, दो छासठ के अंदर जितनी नाना गुणानी है उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालो और उसको किससे गुणा करना है। अपकर्षण उत्कर्षण भागार डिवाइडेड बाय अंतर्मूल, इससे उसको गुणा करना। फिर ऊपर की अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर की नाना गुणानी शलाकाओं का विलन करके और उस विरलित राशि को द्विगुणित करके परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो, यानी यहाँ जो अंत कोड़ा कोड़ी वाली पूरी जो है उसके नाना गुणानी शलाकाओं के द्वारा हमने अन्योन्य अभ्यस्त राशि की बराबर विरलित करके उसको द्विगुणित करना है ना हर एक को, नहीं समझे। अन्योन्य अभ्यस्त राशि कैसे निकालते हैं, नाना गुणानी प्रमाण दुआ लिख के आपस में गुणा करो। यहाँ क्या लिखा है, अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर की नाना गुणानी शलाकाओं का विरलन करके और विरलित राशि को द्विगुणित करके, यानी विरलन करने ने एक एक बिखेर देना, वो एक एक को अभी दो दो कर दो और परस्पर गुणा करो, यानी अन्योन्य अभ्यस्त राशि मिल जाएगी। जो राशि उत्पन्न हो एक कम उसमें, यानी अन्योन्य अभ्यस्त राशि माइनस वन, उसमें पल्ले के संख्यात वे भाग मात्र स्थिति कांडकों के भीतर भीतर की नाना गुणानी शलाकाओं की एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि से भाग दो। अंत कोड़ा कोड़ी वाली अन्योन्य अभ्यस्त राशि माइनस वन डिवाइडेड बाय कितने स्थिति कांडक हुए, पल्ले के संख्यात वे भाग इतने स्थिति कांडक हुए, उसके भीतर जो नाना गुणानी शलाका होगी उसके अन्योन्य अभ्यस्त राशि में से भी एक कम कर दो और इस अन्योन्य अभ्यस्त राशि से वो पहले वाली को भाग दो। क्या कहा, अंत कोड़ा कोड़ी के अन्योन्य अभ्यस्त राशि माइनस वन डिवाइडेड बाय स्थिति कांडक घात कितने बार हुए, पल्ले के संख्यात बार, नहीं पल्ले के संख्यात वे भाग मात्र स्थिति कांडकों के भीतर, नहीं वो पल्ला के संख्यात भाग स्थिति कांडकों का प्रमाण है, यानी आयाम है। स्थिति कांडक घात तो हजारों बार होते हैं परंतु एक एक स्थिति कांडक कितना है, पल्ले के संख्यात भाग, शुरू में तो पल्ले का संख्यात भाग होगा ना, जैसे स्थिति कम हो जाएगी पल्ले का संख्यात भाग हो जाएगा, तो उसके भीतर जो नाना गुनाह निशला का होगी उसकी अन्य अन्य बेस राशि में कम कर दो, पहले राशि को इस राशि से भाग दो और जो लब्ध आवे उसे डेढ़ गुनहानी को गुणा करके। ये ऐसा क्यों करना है? क्योंकि स्थिति कांडक घात इतने हो गए हैं। स्थिति कांडक घात करने के लिए कौन सा, वो कैसा निकालना, हमें द्रव्य कैसे निकालना कि जितना स्थिति कांडक में जितने निशे के वो पूरे के पूरे नीचे आ गए हैं। तो उसका प्रमाण निकालने के लिए अन्य अन्य अभ्यस्त राशि वगैरह निकालते हैं।
या पे ये जो पहले राशि जो स्थापित की है ना, जो दो छाछठ सागर के भीतर की नाना गुणा सलाहों का विलन करके और उन विलन अंकों को द्विगुणित करके परस्पर गुणाकर से जो राशि उत्पन्न हो उसे अंतर्मुट से बातचीत अपकर्षण उत्कर्षण भागा से गुणा करके स्थापित करो। वहाँ पे अंतर्मुट से क्यों बातचीत किया? एक समय
क्योंकि उसका जो भागा है ना, ये तो अंतर्मुट से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागा, ये कोई संख्या बतानी है।
हाँ, नहीं वहाँ पे कौन सी संख्या बता,
गुणा करना है उसको।
हाँ।
ये अन्योन्य, हाँ अन्योन्य अभ्यस्त राशि जो है।
सो एक समय में जो द्रव्य अपकर्षण उत्कर्षण भागा,
यानी एक जगह ये स्थापित करना हाँ। है और उसके बाजू में अभी जो हमने दूसरी बात देखी थी
हाँ।
अमुक अमुक गुणा करके उसके पूर्व में स्थापित भागार के समीप में इसको स्थापित करो
हाँ।
तो प्रथम स्थिति कांडक से उत्पन्न हुई विकृति को पूछा होती है। ये सबसे छोटी विकृति को पूछा होगी क्योंकि अभी पहला ही स्थिति कांडक घात हुआ है
हाँ।
कितना हुआ स्थिति कांडक का प्रमाण? पल्य का संख्या अथवा भाग। अभी एक ही कांडक की बात चल रही है। पहले प्रथम स्थिति कांडक घात हुआ तब क्या हुआ? स्थिति कांडक घात हुआ था तो सत्ता में कितनी स्थिति थी? अंत कोड़ा को। उसमें से घात कितना हुआ? पल्य के संख्या अथवा भाग इतना घात हुआ। तो उसके लिए ये बात आई ना, यानी ये छोटे में छोटे अभी वो कैसे निकाला उसको थोड़ा हम गौन करेंगे। तो पहले स्थिति कांडक से जो विकृति गोपुच्छा हुई, क्योंकि जितने अभी एक स्थिति कांडक हुआ, एक स्थिति कांडक घात हुआ तो कितने पल्ले का संख्यात्वा भाग हुआ, वो संख्यात्वा भाग कहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? नीचे के रिमेनिंग जो है उसमें अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण निषेक है, उसमें से पल्ले का संख्यात्व भाग का निषेक का घात होकर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? प्रकृति गोपुच्छा के साथ उसको दिया जाएगा। बराबर है ना? हाँ। तो उसको क्या कहेंगे? जघन्य विकृति गोपुच्छा। यह इतना ही देख लो, बाकी अभी बाकी को गौण करो। अभी नीचे से चौथी लाइन अंतर्मूर्त काल में ये बातें आई है। अंतर्मूर्त से भाजित हाँ, सिद्धि कांडक के लिए अंतर्मूर्त लगता है, इसलिए एक समय में इतना होता है तो अंतर्मूर्त उसके लिए उसको गुणा करें। अभी वो कैसे निकालना उसको गौन करके नीचे से चौथी लाइन देखो। यह जघन्य विकृत गोपुच्छा प्रकृति गोपुच्छा से गुण संक्रमण के द्वारा पर प्रकृति रूप से संक्रमण करने वाले द्रव्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। यह जघन्य में जघन्य विकृति गोपुच्छा है। अभी वो पहले स्थिति कांडक में जो दिया था माल और उसी समय जो गुण संक्रमित हुआ था तो गुण संक्रमित है उससे, ये जो है विकृति गोपुच्छ का द्रव्य वो असंख्यातवे भाग है, इतनी बात यहाँ लेनी है। क्योंकि गुणकरण संक्रमण भागार से अन्योन्यान्यास से उत्पन्न हुई राशि असंख्यात गुणी होती है। यानी गुण संक्रमण भागार से अन्य रूप संक्रमित हुई जो राशि है वह असंख्यात गुणी है। अब ये तो पहला स्थिति कांड घात हुआ, तो क्या हुआ, वो जघन्य विकृति गोपुच्छा मिली हमें। विकृति गोपुच्छा का अर्थ क्या है, स्थिति कांड घात के अंतिम समय में जो फाली खिरती है उसके द्वारा जो वहां बनेगी उसको विकृति गोपुच्छा कहा। दूसरे स्थिति कांड का पतन होते समय जो विकृति गोपुच्छा उत्पन्न होती है उसका प्रमाण लाने के लिए पहले की ही तरह भाज्य भाजक राशियों की स्थापना करना, इतना विशेष है। अंत कोड़ा कोड़ी के भीतर की नाना गुन्हानी शलाकाओं में से प्रत्येक को दूना करके परस्पर में गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो, यानी ये कौन सी है, अन्योन्य अभ्यस्त राशि, उसमें एक कम करके जो राशि आवे उसे दो स्थिति कांडकों के भीतर की नाना गुन्हानी शलाकाओं का विरलन करके और उनमें से प्रत्येक को दूना करके परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो उसमें से एक कम राशि को भागहार स्थापित करना चाहिए। पहले क्या किया था, अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण अन्योन्य अभ्यस्त राशि डिवाइडेड बाय एक स्थिति कांडक वाली जो है उसमें जो नाना गुणानी थी उसके राशि से भाग दिया था अन्योन्य अभ्यस्त राशि। अब क्या करना है, अब जो नाना गुणानी के जो नाना गुणानी शलाकाओं में ये जो उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि हुई है उसमें से एक कम करना और डिवाइडेड बाय अभी दो गुणहानि में जो काल बिताया है, दो स्थिति कांडकों के भीतर की नाना गुणहानि, एक स्थिति कांडक पल्ले के संख्यात्वा भाग था और दो स्थिति कांडकों के भीतर जो नाना गुणहानि होगी उसको उससे डिवाइड करना।
तो ये दुगुना हो गया, ये जो अभी जो पल्ले का संख्यात्वा भाग प्रमाण जो नाना गुणहानि है, जो कांडक प्रमाण, वो पहला कांडक और दूसरा कांडक दोनों की मिलके जो हुई, हाँ, उसका प्रमाण लिया,
उसका विरलन करना, उसको दुगुना करना,
हाँ,
और उसमें से एक कम करके उसको भागहार रूप से स्थापित करना।
हाँ।
इस प्रकार क्रम से 3, 4, 5, 6, 7 आदि कितने होते हैं स्थिति कांडक, संख्यात 1000 स्थिति कांडकों का अपूर्वकरण काल में पतन होने पर विकृति गोपुच्छा उत्पन्न कर लेनी चाहिए। अभी विकृति गोपुच्छा बड़ी बड़ी होगी, इतना ही लेना है। पहले जघन्य से शुरू किया था, ऐसे संख्यात 1000 बार हुआ, अब क्या होगा, अपूर्वकरण के बाद अनिवृत्तिकरण शुरू होगा, फिर अपूर्वकरण को समाप्त करके अनिवृत्तिकरण का प्रारंभ करने पर उसके अंदर संख्यात 1000 स्थिति कांडकों का पतन होने पर स्थिति सत्कर्म, अभी स्थिति सत्कर्म में सत्ता में जो पड़ा है स्थिति, उसकी स्थिति कितनी है, असंगी जीव के स्थिति बंध के समान है, एक क्षपक का तो स्थिति सत्कर्म कंपेयर टू असंगी का स्थिति बंध कितना होता है,
1000 सागर,
क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है। क्योंकि हमने देखा था अंत कोड़ा कोड़ी में से पल्ले का संख्यात्वा भाग तो संख्यात बार हो जाएगी तो पल्ले होगा और संख्यात पल्ले हो गए तो सागर हो जाएगा। ऐसे हजारों स्थिति कांड घात होते चले गए तो स्थिति कितनी रहेगी, अभी 1000 सागर। इस प्रकार इस क्रम से संख्यात 1000 स्थिति कांडकों के जाने पर ऐसे ही चलता ही रहा सिलसिला, तो क्या होगा, अब 1000 सागर से 100 सागर हो गई स्थिति, 50 सागर हो गई, 25 सागर हो गई, होना स्वाभाविक है ना।
10 कोड़ा कोड़ी पल्ली इज इक्वल टू 1 सागर, बराबर।
हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी।
तो यहाँ पे स्थिति कांडक कितने हुए,
बहुत होते हैं, हजारों हजारों होते रहते हैं। हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी भी संख्यात ही कहेंगे ना हम उसको, और उसको भी संख्यात 1000 कह सकते हैं। एक कोड़ी ने कितने 1000,
नहीं पर यहाँ पे घात होता है पल्ले का संख्यात्वा भाग,
पहला पल्ले का संख्यात्वा भाग,
तो पल्य का संख्या तो भाग में पल्य कंप्लीट करने के लिए
मान लेते पल्य का दसवा भाग, तो दस बार हो गए तो एक पल्य स्थिति कमी होगी,
तो दस कोड़ा कोड़ी पल्य।
हाँ हाँ, अभी उसको भी संख्या हजार ही कहेंगे। अब 25 सागर, 25 सागर से एकेंद्री के समान सागर तक आ गए, है ना? उससे आगे संख्या हजार, अभी भी संख्या हजार हो रहे हैं। ये संख्या हजार कितने बार कहा? संख्या हजार बार कहा। उसके आगे संख्या हजार स्थिति कांडकों का पतन होने पर बाद में पल्योपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म होता है, क्योंकि देखो जो सागर था उससे पल्य प्रमाण होने के लिए दस कोड़ा कोड़ी बार, तो एक एक पल्ले जाएगा तो भी दस कोड़ा कोड़ी बार करना पड़ेगा। अब यहाँ की विकृति गोपुच्छा का प्रमाण लाने पर देखो, अभी जितनी कम हो रही है स्थिति तो उसके निषेक भी बढ़े हुए से, और विकृति गोपुच्छा का प्रमाण भी बढ़ेगा। तो यहाँ की विकृति गोपुच्छा का प्रमाण लाने पर भाज्य और भागहार की स्थापना का क्रम पहले की ही तरह होता है। क्यों? पहले तो अंत कोड़ा कोड़ी वाली ऊपर थी और अभी जितनी स्थिति है उसको ले लेंगे, हाँ, और स्थिति कांडक का प्रमाण उससे भाग देंगे। इतना विशेष है कि अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर की गुणहानी, नाना गुणहानी शलाकाओं का विरलन करके ऊपर भाज्य राशि तो वही रही है, उनकी भाज्य राशि जो है वो उतनी ही रखी है, अंत कोड़ा कोड़ी के नाना गुणहानी का विरलन करके, यानी अंत कोड़ा कोड़ी वाली अन्योन्य अभ्यस्त राशि माइनस वन, ये भाज्य राशि है। देखो इतना विशेष है कि अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर की नाना गुणहानी शलाकाओं का विरलन करके प्रत्येक को दुना करके परस्पर गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो, एक कम उसके भागार रूप से, अभी उसका भागार रूप कौन सा है? पल्योपम कम अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर की नाना गुणहानी शलाकाओं का दुना करके परस्पर में गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो उसमें एक कम भागहार राशि करनी चाहिए। ऐसा स्थापित करने पर उस स्थान की विकृति गोपुच्छा आती है, यहाँ की विकृति गोपुच्छा आती है। हर एक स्थान की विकृति गोपुच्छा अलग अलग उसका प्रमाण है। यह विकृति गोपुच्छा भी गुण संक्रमण के द्वारा पर प्रकृति रूप से संक्रमण करने वाले द्रव्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण होती है, क्योंकि यानी यह भी असंख्यातवा भाग है, संक्रमण द्रव्य से असंख्यातवा भाग। हम इतने बार स्थिति कांड करके आए हैं, यहाँ की विकृति को पूछा भी संक्रमित द्रव्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है अभी यहाँ तक, क्योंकि गुण संक्रम भागहार की अपेक्षा पल्योपम के भीतर की नाना गुणहानी शलाकाओं की अन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है, यानी वो भागहार बड़ा है। अब पल्योपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म के शेष रहने पर, ये तो पल्ले तक की बात बताई, अभी पल्योपम शेष रहने पर क्या होता है? उसमें से स्थिति कांडक को ग्रहण करते हुए स्थिति कांडक के लिए उस स्थिति के संख्यात बहुभाग को ग्रहण करता है। अब यहाँ का जो कांडक है वो संख्यात बहुभाग प्रमाण है। पहले तो पल्ले का संख्यातवा भाग होता था, ऐसे करते करते पल्ले प्रमाण हो गया, अब पल्ले का संख्यात बहुभाग ग्रहण करेगा कांडक रूप से, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है। इस प्रकार शेष स्थिति के संभाग को ग्रहण करता हुआ, यानी हर बार ऐसा ही होगा, हर एक स्थिति कांड घात होगा तो जो बची हुई का बहुभाग, फिर बची हुई का बहुभाग, फिर बची हुई का बहुभाग, ऐसे करते हुए दुरापकृष्टि स्थिति सत्कर्म के प्राप्त होने तक जाता है। यानी इतनी स्थिति होती है उसका नाम है दुरापकृष्टि। अभी तक क्या होता था? पल्ले के संख्यात बहुभाग को ग्रहण करता था।
पल्य प्रमाण जब स्थिति हो गई, पीछे पल्य के संख्यात बहुभाग को ग्रहण करते उसका कांडक
कांडक होता है, यानी पल्य का संख्यात्वा भाग शेष रहा है। संख्यात्वा भाग
वो जो संक्रमण द्रव्य से
अभी भी, हाँ, अभी अभी छोटा ही है। हाँ, वो समान कब होगा वो बताएंगे, फिर उससे ज्यादा कब होगा वो बताएंगे। अभी तक क्या देख रहे हैं, विकृति गोपुच्छा का प्रमाण कम है और गुण संक्रमित द्रव्य बहुत ज्यादा है, असंख्यात गुणा है। फिर बाद में उसको घटाते घटाते कहेंगे कि वो दोनों समान हो गए, फिर बाद में कहेंगे ये ज्यादा हो गया। इतना ही देखना है, बाकी गणित को भूल जाओ। तो यहां दुरापकृष्टि स्थिति सत्कर्म प्राप्त हुआ, यानी सत्ता इतनी घट गई उसका नाम है दुरापकृष्टि। यहां पर भी पहले की तरह ही विकृति गोपुच्छा का प्रमाण लाना चाहिए। इतना विशेष है कि अंतक कोड़ाकुड़ी के अभ्यंतरवर्ती नाना गुणहानी शलाकाओं की रूपोन अन्योन्य अभ्यस्त राशि की भागार रूप से दुरापकृष्टि से हीन अंतक कोड़ाकुड़ी के अभ्यंतरवर्ती नाना गुणहानी शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि में एक कम राशि की स्थापना करनी चाहिए। ऊपर कौन सी है, अंत कोड़ा कोड़ी की अन्योन्य अभ्यस्त राशि माइनस वन, और नीचे
दुरापकृष्टि माइनस कोड़ाकोड़ी।
हाँ, नहीं नहीं, अंत कोड़ाकोड़ी माइनस दुरापकृष्टि, और उसकी जितनी नाना गुणहानी शलाका उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि, उसमें भी एक कम। हाँ, नहीं, हमेशा भाज्य उतना ही लेना है, और भागहार में अंतक कोड़ाकोड़ी माइनस उसको करना, अंतक कोड़ाकोड़ी में से जो हम जहां जितनी स्थिति तक आए हैं उसको माइनस करके उसकी नाना गुणहानी शलाका लेना। माइनस क्यों करना, क्यों कितनी अभी तक गई है, नहीं नहीं पूरी पल्ले का असंख्या तो भाग रह गया है, हाँ माइनस करना, तो बाकी जितना चला गया है उसकी नाना गुणहानि ने, हाँ, और यानी उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालना। ऊपर की जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि माइनस वन डिवाइडेड बाय ये दूसरी, यानी जितना घात हो चुका है उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि माइनस वन।
तो यहाँ पे ये जो प्रमाण आएगा वो हम लोग को
विकृति गोपुच्छा का प्रमाण आता है। इस प्रकार स्थापित करने पर उस स्थान की विकृति गोपुच्छा होती है। यह विकृति गोपुच्छा भी क्या कहा, अभी यहां तक आया है, फिर भी कहां तक आया, दुरापकृष्टि तक आया हुआ है, फिर भी प्रकृति गोपुच्छा के गुण संक्रमण भागहार के द्वारा परप्रकृति रूप से संक्रमण करने वाले द्रव्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि गुण संक्रम भागहार से पल्लोपम के संख्यात्वे भाग प्रमाण दुरापकृष्टि स्थिति के अभ्यंतरवर्ती नाना गुणहानी शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है। जो संचित द्रव्य है उसको गुण संक्रमण भागहार से भाग देंगे तो उतना द्रव्य संक्रमित होगा, और जो संचित द्रव्य है उसको जो रिमेनिंग जो स्थिति है
उसके
अन्य अभ्यस्त राशि से भाग दो तो हमें वो अपकर्षित होने वाला द्रव्य मिलेगा। अपकर्षित है ना, स्थिति कांडक के द्वारा नीचे गिरने वाला द्रव्य।
हमने आगे नाना गुणादि का प्रमाण पल्लक असंख्यात में भाग प्रमाण देखा था, तो यहाँ पे जो पल्लक का असंख्यात भाग बचा है
ये तो इसका इस वो तो पल्ले का असंख्यात भाग तो दुरापकृष्टि की स्थिति कितनी है उसको बताए। हाँ,
उसमें भी नाना गुणानी,
उसकी अपनी नाना गुणानी अलग होगी। दुरापकृष्टि तो पल्ले का असंख्यात भाग है, उसके बाद स्थिति कांडक संख्या असंख्यात बहुभाग होता है, इसलिए उसका नाम है दुरापकृष्टि। दुरा सागर से पल्ले हुआ, पल्ले से के बाद दुरापकृष्टि हुआ, तो पल्ले के बाद पल्ले का संख्या यानी जो रिमेनिंग स्थिति उसका संख्यात बहुभाग कांडक को लिया था। ऐसे होते 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 पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति शेष रहती है, उसके बाद क्या होगा, अभी असंख्यात बहुभाग का कांडक होगा, वो पर्टिकुलर जो पॉइंट है उसको कहेंगे दुरापकृष्टि। दुरापकृष्टि के पहले संख्यात बहुभाग प्रमाण कांडक था, पल्ले इतनी स्थिति होने के बाद तो संख्यात बहुभाग इतना कांडक का प्रमाण हुआ, वो कहाँ तक? दुरापकृष्टि तक। उसके बाद असंख्यात बहुभाग का कांडक होगा, ये उसका महत्व है।
ये एक ही कांडक होगा ना दुरापकृष्टि के पश्चात के
दिन? नहीं, चलते रहेंगे। हाँ, तब से जो असंख्यात बहुभाग कहाँ से शुरू किया? दुरापकृष्टि से। हाँ, ये उतना ही पॉइंट है, करते ही जाएगा असंख्यात बहुभाग असंख्या। हाँ, अब जब तक आवली प्रमाण शेष नहीं रहे तब उसके स्थिति कांडक घात होते ही रहेंगे। अंतिम आवली को छोड़कर वो अंतिम उसका स्थिति कांडक घात होगा। हाँ। जब आवली माइनस एक इतने निषेक बाकी रहेंगे। अब यहाँ तक समझ में आए ना? थोड़ा कल से थोड़ा तो समझ में आया मेरे को भी। जाने दो ना, इतना तो समझ में आया है। ये नाना गुणानी शलाका से जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकलती है उससे ये इसका प्रमाण निकलता है। शंका, यह राशि यानी दुरापकृष्टि स्थिति रहने पर भी जो विकृति गोपुच्छा होती है यानी जो अपकर्षित द्रव्य है स्थिति कांडक के द्वारा, वह भी गुण संक्रमण भागार से असंख्यात गुणी है, यह किस प्रमाण से जाना? ये ऊपर जो बताया ना उन्होंने, हाँ, उसका जो भागार है, हाँ, भागार बड़ा होगा तभी द्रव्य कम आया ना उसका। समाधान, सम्यक तो प्रकृति के उद्वेलना काल के अंदर की नाना गुणानी शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि अधप्रवृत्त भागहार से असंख्यात गुणी है, ऐसा कथन करने वाले सूत्र से जाना। क्या कहते हैं? सम्यक प्रकृति का उद्वेलना काल कितना है? पल्ले का असंख्यात का। तो वहां की जो नाना गुणानी शलाका है उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि अधप्रवृत्त भागहार से असंख्यात गुणी है। यह अधप्रवृत्त संक्रमण का नाम है। अधप्रवृत्त संक्रमण नाम का जो संक्रमण है उससे असंख्यात गुणी है, उसको खुलासा करेंगे अभी। ऐसा कथन करने वाले सूत्र से जाना, इसका खुलासा इस प्रकार है। सम्यक्त प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? प्रदेश संक्रमण कब होगा? सम्यक प्रकृति में से किसमें अभी संक्रमण होगा? उल्टा जाएंगे तो ही, क्योंकि अभी तक सम्यक के काल में क्या होता था? सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप होता था। हाँ, तो उद्वेलना के काल में उसका संक्रमण होगा। तो उसका उत्कृष्ट संक्रमण किसके होता है? तो गुणित कर्मांश के लक्षण के साथ सातवें नरक में जाकर जब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट द्रव्य होने में अंतर्मूर्त काल बाकी रहे, ऐसा जीव लिया अंतर्मूर्त में उसका उत्कृष्ट द्रव्य हो जाता, तो पहले क्या हुआ उसके? तब मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर जाकर यानी उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया। हाँ, सातवें नरक में जो गुणित कर्मांश जो है वो अंतिम समय में वो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट द्रव्य होता है, उसके एक अंतर्मूर्त पहले यानी वो आयुबंध के पहले भी उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। तो उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करके उत्कृष्ट गुण संक्रमण काल में सबसे छोटे गुण संक्रमण भागहार के द्वारा क्या कहते हैं? काल कितना गुण संक्रमण का? जो अंतर्मूर्त तक गुण संक्रमण होता है तो काल बढ़ा लिया। क्यों? लंबे काल तक उसका संक्रमण होना चाहिए। छोटे गुण संक्रम भागहार के द्वारा जो गुण संक्रमण भागहार से जो संख्या निकलती है उतना उसका संक्रमण होता है। भागहार छोटा तो द्रव्य ज्यादा, छोटा गुण संक्रमण भागहार है तो क्या होगा? कहाँ से कहाँ संक्रमित होगा?
अभी सम्यक तो प्राप्त करने को जा रहा है तो सम्यक तो,
हाँ, अभी उपशम सम्यक्त्व का गुण संक्रमण काल चल रहा है तो मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप हो रहे हैं। गुण संक्रमण भागहार सबसे छोटा लिया है तो संक्रमित द्रव्य ज्यादा होगा, ये बात ख्याल में? ज्यादा होगा तो वो काल भी कब तक होगा? तो अंतर्मूर्त, वो अंतर्मूर्त भी बढ़ा दिया तो उत्कृष्ट काल और जघन्य भागहार यानी सम्यक प्रकृति रूप परिणमित हुआ द्रव्य ज्यादा है,
बहुत ज्यादा है।
अभी इसको लेकर बाद में उसको उद्वेल ना करानी है ना, पहले उसमें ज्यादा द्रव्य आएगा तब जाके उसका द्रव्य उत्कृष्ट होगा। उसके द्वारा सम्यक तो प्रकृति को पूर कर यानी सम्यक प्रकृति रूप संक्रमण करके पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त करने के प्रथम समय में मिथ्यात्व में आया यह जीव अधः प्रवृत्त संक्रमण के द्वारा संक्रमण करने वाले उस जीव के सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। अब जब वह उल्टा संक्रमण शुरू करेगा उस समय उसके उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होंगे, संक्रमित द्रव्य ज्यादा से ज्यादा है क्योंकि उस सत्ता में ज्यादा है उसको। और फिर वो यह सूत्र अधः प्रवृत्त भागार से सम्यक प्रकृति के उद्वेलन काल की नाना गुणानी शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि को सम्यक प्रकृति का उद्वेलन काल कितना है पल्ले का संख्या द्वारा उसकी जो नाना गुणानी शलाका है उससे जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि उत्पन्न होगी उसको असंख्यात गुणा बतलाता है। यानी ये जो अधः प्रवृत्त भागहार है वो छोटा है और जो उद्वेलन काल की अन्योन्य अभ्यस्त राशि है वो असंख्यात गुणा है, क्योंकि यह सूत्र सम्यक्त प्रकृति के उत्कृष्ट उद्वेलना काल के द्वारा उद्वेलना करा के सर्व संक्रमण के द्वारा संक्रमण को प्राप्त होने वाले द्रव्य को इससे थोड़ा बतलाते हुए अवस्थित है। ये अन्य विषय उन्होंने यहाँ उठाया है, क्यों? अपना विषय समझाने के लिए कि दुरापकृष्टि के बाद भी ये जो उसका जो नाना गुणहानि का अन्योन्य भस्य राशि है वो कैसे उसका प्रमाण वो असंख्यात गुणी है ऐसा क्यों कहा, तो उसके साथ इसकी कंपेयर के लिए। अपना यह अध प्रवृत्त वगैरह यहाँ प्रकरण नहीं हुआ है, कर्मकांड में तो हो चुका है परंतु अभी यहाँ सुबह हमने नहीं लिया है। हमें इतना ही लेना है कि वो राशि अभी भी असंख्यात गुणी है। गुण संक्रमण भागहार से अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है, तो ये राशि असंख्यात गुणी है तो जो नीचे आने वाला द्रव्य है वो असंख्यात गुणाहीन होगा और संक्रमित होने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा होगा।
तो यहाँ पे इसे बताएं जो सम्यक प्रकृति का लंबे में लंबे काल से जो उद्वेलना होती है वहाँ पे जो लास्ट जो निश्चित लास्ट जो पाली है वो सर्व संक्रमण भागार के द्वारा जो होता है सर्व संक्रमण सम्यक का मिथ्यात्व रूप उससे ये द्रव्य असंख्यात गुणा ऐसे बताए। हाँ वो सम्यक संक्रमण
लास्ट में तो थोड़ा बचेगा ना उसका, पहले समय में जो उसके उद्वेलना के पहले समय में कितना संक्रमित होगा तो जितना सत्ता में द्रव्य है उसको भागहार देके उतना संक्रमित होगा और संक्रमित होते उद्वेलना होते 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 अभी कितना बचा
जो अंतिम भागहार द्वारा जो द्रव्य होता है
सर्व संक्रमण भागहार कितना है
वो जितना द्रव्य इतना ही है
एक है मान लेते लाख परमाणु है तो एक भागहार है तो लाख के लाख संक्रमित हुए क्योंकि अंतिम निषेक है अंतिम एक निषेक बाकी है उसका सर्व संक्रमण होगा तो वहां जघन्य उसका द्रव्य कहेंगे हम, उससे पहले वाला द्रव्य ज्यादा है ना, यही बात बताते हैं। देखो यहाँ नीचे से दूसरी लाइन, यदि सर्व संक्रमण का द्रव्य बहुत होता तो अधः प्रवृत्त संक्रम के द्वारा प्रदेश संक्रम का प्रतिपादन करने वाला सूत्र उत्कृष्ट स्वामित्व न कहता क्योंकि ऐसा होना निषिद्ध है। ये जो दूसरी बात है सम्यक प्रकृति की जो बात है हमें तो इतना ही लेना है, अभी तक हमने क्या देखा है दुरापकृष्टि इतनी स्थिति बाकी रहने पर भी वहां जो विकृति गोपुच्छा होती है वो गुण संक्रमित द्रव्य से असंख्यात वे भाग प्रमाण है, इतनी बात ही हमने देखी अभी तक, इतनी बात तो ख्याल में आई ना, क्योंकि ये सारा अटपटा है सारा घोटाला है। हाँ अपने लिए घोटाला है ना आचार्यों की, तो कितनी
अभी थोड़ा क्लियर हो जाता था भविष्य में भी क्लियर
बिल्कुल होगा ना, अभी जो कल नहीं क्लियर था तो आज थोड़ा हुआ कि नहीं हुआ कल तो हम क्या पढ़ रहे थे पता नहीं लगता था, अभी तो ये बात ख्याल में आई कि विकृति गोपुच्छा का प्रमाण गुण संक्रमित द्रव्य के कितने कितना भाग प्रमाण है, तो अभी भी असंख्यात भाग प्रमाण ही चल रहा है, अभी बढ़ा नहीं है, अब आगे बढ़ेंगे। शंका, इस सूत्र से अधप्रवृत्त भागार से दुरापकृष्टि स्थिति की नाना गुणानी शलाकाओं की अन्य व्यस्त राशि भले ही असंख्यात गुणी सिद्ध होवे तो भी, क्या कहते हैं ये जो अधप्रवृत्त भागार में क्या है वो भी उल्टा संक्रमण ही है ना, और यहाँ सीधा संक्रमण है, तो वहां जैसे वो संक्रमण का भागार है वैसे यहाँ का जो भागार है तो उससे अन्योन्य अभ्यस्त राशि, क्यों ये अन्योन्य अभ्यस्त राशि से हम भाग देंगे तो हमें वहां का द्रव्य कितना नीचे आएगा वो बात ख्याल में आती है। तो ये अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है, ये भागाकार असंख्यात गुणा है, तो नीचे आने वाला द्रव्य असंख्यात वे भाग है, ये बात सिद्ध होती है। तो भी अभी इस पर तो उसने मान लिया, तो भी आय से अर्थात विकृति गोपुच्छा को प्राप्त होने वाले द्रव्य से, उसको आय कहा, प्रकृति गोपुच्छा में आकर मिली है ना, इस आय से, आय द्रव्य से व्यय अर्थात गुण संक्रमण के द्वारा पर प्रकृति को प्राप्त होने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा नहीं हो सकता। ये भागार भले ही असंख्यात गुणा है यहाँ पर, फिर भी वो गुण संक्रमित द्रव्य असंख्यात गुणा नहीं हो सकता, क्योंकि गुण संक्रमण भागार से दुरापकृष्टि स्थिति की नाना गुणानी शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि के स्तोकपणे अथवा बहुतपणे का ज्ञान नहीं होता। इसका कहना है अधप्रवृत्त भागार के द्वारा तो ये सिद्ध होता है, परंतु दुरापकृष्टि के समय जो यहाँ गुण संक्रमण भागार है उसके साथ क्यों, आप अधप्रवृत्त के साथ क्यों इसकी कंपेयर कर रहे हैं, गुण संक्रमण भागार के साथ ये असंख्यात गुणापना नहीं सिद्ध होता है, ये शंकाकार की शंका है। समझ नहीं, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो गुण संक्रम भागार से असंख्यात गुणे अधप्रवृत्त भागार से उक्त अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी न होती। ये क्या कहते हैं, यहाँ क्या सिद्ध किया, अधप्रवृत्त भागार से इसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है। अब कहते शंकाकार ने पूछा गुण संक्रमण के साथ इसका रिलेशन कहाँ दिखाया, तो बताते हैं जो अधप्रवृत्त भागार होता है वो गुण संक्रमण भागार से असंख्यात गुणा होता है। अधप्रवृत्त ने सामान्य जो संक्रमण है उसमें संक्रमित द्रव्य और गुण संक्रमण में संक्रमित द्रव्य कौन सा ज्यादा है, गुण संक्रमण जो असंख्यात गुणा है, तो उसका भागहार अधप्रवृत्त का भागहार बड़ा होगा तभी तो द्रव्य कम है, और गुण संक्रमण का भागहार छोटा है तो द्रव्य ज्यादा है, है ना। तो यहाँ कहते हैं अधप्रवृत्त का भागहार गुण संक्रमण भागहार से असंख्यात गुणा है, और यह अन्य व्यस्त राशि अधप्रवृत्त भागहार से असंख्यात गुणी है, तो नेचुरली वो असंख्यात गुणी है ही है। ख्याल में, सौ संख्या पांच के मल्टीप्लीकेशन में है कितने, बीस गुना है, तो हजार उससे बड़ी होगी कि नहीं होगी, ऐसे ही यह अन्योन्य अभ्यस्त राशि है अधप्रवृत्त से वो भागहार से असंख्यात गुणी है, और अधप्रवृत्त भागहार गुण संक्रमण भागहार से असंख्यात गुणा है, तो नेचुरली उससे वो असंख्यात गुणा होगा ही होगा, उनका न्याय ख्याल में है बात। देखो क्या कहते समाधान, यदि ऐसा न होता तो गुण संक्रमण भागहार से असंख्यात गुणे अधप्रवृत्त भागहार से उक्त अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी न होते, यानी अन्योन्य अभ्यस्त राशि जो है वो अधप्रवृत्त से भी उस भागहार से भी असंख्यात गुणा है, जो अधप्रवृत्त भागहार गुण संक्रमण भागहार से असंख्यात गुणा है, तो ये दो टाइम असंख्यात गुणा हुआ ना। अतः गुण संक्रमण भागहार से दुरापकृष्टि स्थिति की नाना गुणानी शलाकाओं की अन्य अभ्यस्त राशि का असंख्यात गुणापना सिद्ध होता है। ये बात ख्याल में आई, क्योंकि वो तो बीच वाली राशि है। शायद कहा जाए कि गुण संक्रमण भागार से अदप प्रवृत्त भागार का असंख्यात गुण होना असिद्ध है, सो भी बात नहीं। कोई कहेगा अदप प्रवृत्त भागार गुण संक्रमण भागार से असंख्यात गुणा ये कैसे जाना, तो वेल नोन बात है कहते, क्योंकि अब ये अलग अलग भागारों का प्रकार बताया, यानी प्रमाण बताया। सर्व संक्रमण भागार सबसे थोड़ा है, कितना है? एक है। गुण संक्रमण भागार उससे असंख्यात गुना है। अभी गुण संक्रमण भागार सर्व संक्रमण ने जितने है उतने सारे टर्न हो जाएंगे, गुण संक्रमण उससे असंख्यात गुना है, यानी सभी के सभी परमाणु तो नहीं जाएंगे, विशिष्ट क्वांटिटी में जाएंगे। तीसरे पॉइंट पर अपकर्षण उत्कर्षण दोनों समान ही होते हैं, इसलिए उसको अपकर्षण उत्कर्षण ही कहेंगे। अपकर्षण उत्कर्षण भागार उससे असंख्यात गुना है। इसका अर्थ क्या है? जितना द्रव्य गुण संक्रमित होता है उसका असंख्यातवा भाग द्रव्य अपकर्षित होता है। भागार जहां मल्टीप्लीकेशन में है तो लब्ध राशि उससे उल्टे प्रमाण में आएगी। तो गुण संक्रमण से अपकर्षण भागार असंख्यात गुना है, और उससे अधप प्रवृत्त भागार उससे असंख्यात गुना है। ये चौथे पॉइंट पर आया। फिर पांचवें पॉइंट पर उद्वेलन काल के अंदर की नाना गुणानी शलाकाओं की अन्य अभ्यस्त राशि उससे असंख्यात गुण है। ये बात ख्याल में आई? और दुरापकृष्टि स्थिति के अंदर की, ये छठा पॉइंट। पहले तो उद्वेलन काल के अंदर के नाना गुणानी की अन्य अभ्यस्त राशि निकाली, उससे भी पल्ले के असंख्यात भाग
उसकी नाना गुणानी शलाका है,
क्योंकि सबको पल्ले का असंख्यात भाग ही कहेंगे, परंतु वहाँ का जो पल्ले का असंख्यात भाग है वहाँ के नाना गुणानी शलाकाओं की जो अन्य अभ्यस्त राशि है उससे दुरापकृष्टि स्थिति के अंदर की नाना गुणानी शलाकाओं की अन्य अभ्यस्त राशि उससे असंख्यात गुणी है। तो ये छठवें पॉइंट पर है, और गुण संक्रमण भागार दूसरे पॉइंट पर है। वो असंख्यात गुणा रूप से नहीं है, वहां पर असंख्यात गुणा क्रम से जो आते हैं उसको लिया है यहाँ पर। अभी ये इन बिटवीन जहां होगा, क्योंकि अपना वो विषय नहीं है ना, अपना तो दूसरे से छठा के इतना असंख्यात गुणा है इतना ही बताना है उनको। इस सूत्र सूत्रा विरुद्ध है, सूत्र अविरुद्ध हाँ, उद्वेलना से दुरापकृष्टि का काल छोट
नहीं, ये उद्वेलना काल के दुरापकृष्टि पल्ले का असंख्यात में भाग की जो दुरापकृष्टि है उससे ये जो पल्ले के असंख्यात
वो काल बड़ा है, तो उसकी नाना गुणानी बड़ी होगी और उसके अन्य अभ्यस्त राशि नेचुरली ज्यादा
असंख्यात गुणा बताया गुणा है। जो दुरापकृष्टि प्रमाण जो द्रव्य रहता है वो ये पल्ले के असंख्यात विभाग से असंख्यात गुणा है, इसे बताया।
हाँ, फिर भी उसको पल्ले का असंख्यात विभाग ही कहेंगे। हाँ, और उसका काल ज्यादा है। इस सूत्राविरुद्ध यानी सूत्र अविरुद्ध, पहले एक समयाविरुद्ध है इसे बात। हाँ, व्याख्यान में कहे गए अल्पभूत्व के आधार से गुण संक्रमण भागार से अदप प्रवृत्त भागार का असंख्यात गुणापना सिद्ध है। इतनी बात सिद्ध की दुरापकृष्टि जब थी तब जो उसका अपकर्षित द्रव्य अपकर्षित है ने स्थिति कांडक के द्वारा अपकर्षित द्रव्य वो कितना होगा, उसकी जितनी अन्य अभ्यस्त राशि उससे भाग देना है, इतना ही। हमें जितनी स्थिति बची है उससे भाग देंगे, और गुण संक्रमण में गुण संक्रमण भागार से भाग देंगे। अब ये भागार असंख्यात गुणा है तो द्रव्य असंख्यात गुणाहीन है, यानी विकृति गोपुच्छ का द्रव्य संक्रमित द्रव्य से असंख्यात गुणाहीन है, बराबर। दुरापकृष्टि स्थिति सत्कर्म के रहते हुए स्थिति कांडक के लिए स्थिति के असंख्यात बहुभाग को ग्रहण करता है, ये यहाँ की विशेषता है। अभी दुरापक दृष्टि इतनी रह गई, अब क्या होगा? अब जो स्थिति कांडक होता है वो जितनी स्थिति है उसका असंख्यात बहुभाग लेता है और बाकी स्थिति पल्ले के असंख्यात वे भाग रहती है। हर बार उसको पल्ले का असंख्यात भाग ही कहेंगे कुछ काल तक, फिर भी वो असंख्यात भाग हो जाएगा। उसमें यदि जघन्य परिता संख्यात की अर्धच्छेद शलाकाओं से अधिक गुण संक्रमण भागार के अर्धच्छेदों की यदि जघन्य परिता संख्यात की अर्धच्छेद शलाकाओं से अधिक गुण संक्रमण भागार के अर्धच्छेदों की शलाका प्रमाण गुणहानि शलाकाएं होती है तो भी आय से अर्थात विकृति गोपुच्छा के द्रव्य से व्यय अर्थात गुण संक्रम के द्वारा प्रहर प्रकृति को प्राप्त होने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा हुआ, क्योंकि व्यय का गुणकार जघन्य परिता संख्यात प्रमाण पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? देखो देखो, इसको थोड़ा समझना चाहिए। अभी जघन्य परिता संख्यात की अर्धशलाका, अर्धच्छेद शलाका, अर्धच्छेद किसको कहना ये पहले देखेंगे। देखो हमारे पास एक द्विरूप वर्ग धारा है, मालूम है ना? कौन सी? चार, सोलह, 256, 56। उसके अर्धच्छेद कितने हैं? अर्धच्छेद का अर्थ क्या होता है? दो से कितने बार भाग दे या कितने बार दो से गुणा करेंगे तो वो राशि आती है, उसको अर्धच्छेद कहेंगे। तो चार का अर्धच्छेद कितना है? दो। जब इसका वर्ग होता है तो अर्धच्छेद दुगुना होता है, चार, आठ और सोलह, बराबर। ये बात ख्याल में आई? 65,536 का पन्नट्टी का अर्धच्छेद, इसको अर्धच्छेद शलाका कहेंगे। ये बात ख्याल में आई? अब यहां क्या कहते हैं देखो, ये वाक्य जरा अर्धच्छेद शलाका ने अर्धच्छेद की वैल्यू, अर्धच्छेद कितने हैं? कल हमने जो हिस्सा देखा वो नहीं, अर्धच्छेद कितने हैं उसके, उस संख्या का लॉग कितना है, इसे लॉग टू जिसको कहते हैं। हाँ, अब यहाँ क्या बताते हैं ये थोड़ा जरा समझते। अब यहाँ के थर्ड लाइन, उसमें यदि ये नाना गुणहानि शलाका कितनी हो तो उसकी बात है। अब तक हमने क्या देखा था? नाना गुणहानि शलाका है और उसके द्वारा उत्पन्न अन्योन्य अभ्यस्त राशि वो बढ़ रही है कि कम हो रही है?
कम हो
रही है, क्योंकि अभी जितनी स्थिति बाकी है उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालनी है। तो अभी हमारी अन्योन्य अभ्यस्त राशि अभी भी वो जो भागार है, अन्योन्य अभ्यस्त राशि रूप जो भागार है वो गुण संक्रमण भागार से अभी भी बड़ा है। अब कहते हैं, अब कौन सा भागार लिया? अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी ली थी? देखो, जघन्य परिता संख्यात की अर्धच्छेद शलाकाओं से अधिक गुण संक्रमण भागार के अर्धच्छेदों की शलाका प्रमाण गुण संक्रमण भागार के, हम मान लेते गुण संक्रमण भागार ये पनठी है, उसके अर्धच्छेद है 16 और जघन्य परिता संख्यात मान लेते हम 16 है, उसके अर्धच्छेद है 4। तो 4 अधिक 16 कितने हो जाएंगे? 20। यदि नाना गुणहानि शलाका हमारी 20 होती है तो किसते कितने अधिक है गुण संक्रमण की नाना गुणहानि शलाका, उनसे जगन्य परिता संख्यात की नाना गुणहानि शलाका प्रमाण अधिक है, यानी चार से अधिक है, अपने मान लिया है। यानी अन्योन्य अभ्यस्त राशि किसकी निकालेंगे हम, नाना गुणहानि शलाका 20 है उसके अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकलेगी, बराबर। अन्योन्य अभ्यस्त राशि कैसे निकालते हैं, नाना गुणहानि प्रमाण जो है उतने दो लिखकर आपस में गुणा करना। तो अभी मुझे कहो, देखो यहाँ चार और अधिक यहाँ 16, ये अर्धच्छेद चला का अर्धच्छेद है, ये 16 किसका अर्धच्छेद है, पन्नट्टी का, और वहां क्या लेना गुण संक्रमण के इसका, और ये अर्धच्छेद कितना है जगन्य परिता संख्यात का, अपनी वैल्यू, यानी ये 16 का है और ये 65536 का है, बराबर। गुण संक्रमण भागार, तो अभी भी नाना गुणहानि का प्रमाण कितना है, इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है नाना अन्य अभ्यस्त राशि कितनी ज्यादा है, तो अभी जो नाना गुणहानि है वो कितनी है इसकी, 4 + 16 = 20 है, नाना गुणहानि 20 है, तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी होगी,
20 + 20,
देखो इसको दो बार 16 को दो दो बार करेंगे तो गुण संक्रमण भागार आएगी, यानी पन्नट्टी आएगी,
और चार को
ये चार अधिक है तो चार बार और दो 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 करना है, यानी 16 से गुणित करना पड़ेगा गुण संक्रमण, ये गुण संक्रमण है और ये जो 16 है जगन्य परिता संख्यात है, अर्धच्छेद के द्वारा हमें मूल राशि निकालनी है, ये 16 की मूल राशि 65536 है, यानी गुण संक्रमण के जो अर्धच्छेद है उसकी मूल राशि है गुण संक्रमण भागार, और इसके पास अधिक अर्धच्छेद कितने हैं, जगन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण है, उसकी मूल राशि कितनी है जगन्य परिता संख्या, यानी अभी अनन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण 20 मल्टीप्लाइड बाय जगन्य परिता संख्या है,
20 मल्टीप्लाइड और प्लस
मल्टीप्लाइड, देखो अर्धच्छेदों में जहां प्लस होता है ओरिजिनल राशि गुणित प्रमाण में होती है, फिर से देखो ये चार और दो हमने अर्धच्छेदों की टोटल की, या बीच में ही लेना पड़ेगा, चार और दो की टोटल की, तो 6 अर्धच्छेद किसके हैं,
ये 16 और 256 के बीच में कर दो,
नहीं नहीं नहीं, चार और दो अर्धच्छेद जिसके 6 है ऐसी राशि कौन सी है बोलो, हाँ हाँ इन दो का गुणकार करना, जिनके अर्धच्छेदों की टोटल की जाती है उस राशि का ओरिजिनल राशि कौन सी, इनके गुणकार रूप होती है, देखो 4 × 16 करना है तो कैसे करना, इसके अर्धच्छेद 2 इसके अर्धच्छेद 4, 4 + 2 इसके अर्धच्छेद 64 के अर्धच्छेद 6 हो गए, तो इसके अर्धच्छेदों से ये मिला दो तो ओरिजिनल राशि कितनी होगी, अर्धच्छेद तो 6 हो गए, 4 के बदले अर्धच्छेद 6 हो गए, टोटल ओरिजिनल राशि इसके गुणकार रूप में हो जाएगी। अब यहां देखना गुण संक्रमण भागहार के अर्धच्छेद है और उसमें एक्स्ट्रा कितने हैं, नाना गुणहानि शला का एक्स्ट्रा कितनी है, तो जगन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण अधिक है, तो अभी हमें नाना गुणहानि के द्वारा हमें ओरिजिनल निकाली है, अर्धच्छेद के द्वारा ओरिजिनल राशि निकालनी है, उसका अर्थ क्या है, नाना गुणहानि के द्वारा अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालनी है, बात एक ही है ना, जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि है नाना गुणहानि शला का उसके अर्धच्छेद होते हैं, हम उल्टा देख रहे, नाना गुणहानि प्रमाण 2 संख्या लिखकर गुणा करो तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि आती है, यदि हम कहेंगे हमारी अन्योन्य अभ्यस्त राशि 4 है, सॉरी हमारी नाना गुणहानि चार है, तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी होगी?
दो, नहीं अन्योन्य अभ्यस्त राशि
16। हमारी यदि नाना गुणहानि 8 हो तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि
256।
अभी हमारी नाना गुणहानि कितनी है? 16 प्लस 4 है 20 है, तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि अभी इसके ओरिजिनल इनका गुणाकार करो, यानी गुण संक्रमण भागहार जो है उससे अन्योन्य अभ्यस्त राशि जघन्य परिता संख्यात गुणा है, यानी अभी भी वो असंख्यात गुणा है। बात यही कहना चाहते हैं, जब तक ये है प्रमाण तब तक अभी असंख्यात गुणा है, अब इससे नीचे चले जाएंगे तो असंख्यात गुणा नहीं कहेंगे। अभी भी क्या है, इसकी जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि आने वाली है, क्योंकि नाना गुणहानि शला का अभी भी कितनी ज्यादा है, तो गुण संक्रमण भागहार के जो अर्धच्छेद है उससे जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण अधिक है, क्या नाना गुणहानि, यानी 16 के बदले 20 है, तो 16 किसका अर्धच्छेद हमने मान लिया है, गुण संक्रमण भागहार का, और इसमें 4 अधिक है यानी जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण ज्यादा है, तो इसकी ओरिजिनल अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी होगी, गुण संक्रमण भागहार मल्टीप्लाइड बाय जघन्य परिता संख्यात, यानी अभी भी अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है, यानी अभी भी भागहार असंख्यात गुणा है, तो द्रव्य असंख्यात गुणाहीन ही होगा, ये बात कहना चाहते हैं। इसका अर्थ नहीं लग रहा है जल्दी, थोड़ा लगा कि नहीं लगा? अरविंद भाई ये तो गणित गणित के स्पेशलिस्ट हैं। देखो उसमें यदि मैं ये फिर पढ़ती हूँ, उसमें यदि जघन्य परिता संख्यात की अर्धच्छेद शलाकाओं से अधिक गुण संक्रमण भागहार के अर्धच्छेदों की शलाका प्रमाण नाना गुणहानि शलाकाएं होती है, तो भी आय से अर्थात विकृति गोपुच्छा के द्रव्य से, क्योंकि आय का द्रव्य कैसे प्राप्त होगा, यहाँ के अन्योन्य अभ्यस्त राशि से गुणा करें भाग देंगे तो, और व्यय कैसा होगा, गुण संक्रमण भागहार से भाग देंगे तो, परंतु यहाँ की अन्योन्य अभ्यस्त राशि अभी भी असंख्यात गुणा बड़ी है, क्यों, जघन्य परिता संख्यात गुणा है ओरिजिनल राशि, अर्धच्छेदों के जहाँ टोटल होती है मूल राशियों का गुणकार होता है, ये बात लेना यहाँ पर, यानी अर्धच्छेदों से जितना अधिक है या अर्धच्छेदों का जोड़ होता है वहां मूल राशि गुणकार रूप होती है, या मूल राशि का गुणकार होता है।
यहाँ पे ये गुणाकार बता ही दिया है जगने परिता संख्यात प्रमाण,
वही तो, यानी
ये मिनिमम असंख्यात वाला,
हाँ मिनिमम असंख्यात है, उसके अर्धच्छेद प्रमाण नाना गुणहानि ज्यादा होगी तो ओरिजिनल राशि उसके जघन्य परिता संख्यात गुणा है, तो जघन्य परिता संख्यात गुणा यानी मिनिमम असंख्यात गुणा है ही है, यही बात सिद्ध करनी, वो अर्धच्छेदों के द्वारा उन्होंने सिद्ध की। नाना गुणहानि शला का कितनी ज्यादा बताई, उतनी अभी हम 4 ज्यादा है, तो 4 बार 2 2 2 2 गुणा करो, इतनी ओरिजिनल संख्या उतनी ज्यादा होगी ना उसकी, 16 गुना हो जाएगी, वैसे जघन्य परिता संख्यात गुणा हो जाएगी वो राशि, हाँ, तो भी आय से व्यय असंख्यात गुणा है, क्योंकि व्यय का गुणकार जघन्य परिता संख्यात प्रमाण पाया जाता है, ये बात ख्याल में आई, वो भागहार उसका कम है यानी वो व्यय होने वाली संख्या असंख्यात गुणा है, गुण संक्रमण व्यय है, उसके भागहार से आय वाला जो भागहार है
वो
असंख्यात गुणा है, जघन्य परिता संख्यात गुणा है, भागहार ये असंख्यात गुणा है, आय का भागहार असंख्यात गुणा, तो व्यय का द्रव्य असंख्यात गुणा, भागार के उल्टे मल्टीप्लिकेशन में है ना वो, यानी आय का भागार असंख्यात गुना,
तो
कितने जघन्य परिता संख्यात गुना, इसलिए व्यय का द्रव्य असंख्यात गुना।
इसके नीचे एक कांडक हो जाएगा, पीछे द्रव्य का प्रमाण संख्यात गुणा हो जाएगा।
हाँ, अभी अभी यहाँ तक तो असंख्यात गुणा है। हाँ, अभी उसके बाद वो संख्यात गुणा कहेंगे, अभी भी वो उससे वो बड़ा नहीं होगा। अभी तक हम कहाँ से देखा, अंत कोड़ा कोड़ी से लेकर पहले स्थिति कांडक से बात वहां ली थी, वहां विकृति गोपूछा जघन्य थी, और यहाँ बढ़ते बढ़ते आए हैं। ख्याल में आई बात? अब आगे पढ़ेंगे। असंख्यात गुणा, जघन्य परिता संख्यात गुणा, वो भी मिनिमम असंख्यात ही है, अभी भी उसको असंख्यात गुणा ही कहेंगे। यहां लिखा ना, व्यय का गुणकार जघन्य परिता संख्यात प्रमाण पाया जाता है। इसका कारण ख्याल में आया? क्योंकि यहाँ की नाना गुणहानी शलाका है, जघन्य परिता संख्यात की जितने अर्धच्छेद है उतने अर्धच्छेद प्रमाण गुण संक्रमण भागार के अर्धच्छेदों से उसने ज्यादा है, तो इसके अन्य अभ्यस्त राशि जघन्य परिता संख्यात गुणा है। गुण संक्रमण भागार से यहाँ की अन्य अभ्यस्त राशि जघन्य परिता संख्यात गुणा है, तो वहां व्यय होने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा है। अभी मिनिमम असंख्यात गुणा है, अभी इसके आगे असंख्यात गुणा नहीं रहेगा। क्यों? यहाँ की स्थिति और घट गई है, तो नाना गुणानी शलाका भी अभी कम हो जाएगी। अब यदि उसमें उक्त नाना गुणानी शलाकाएं एक कम होती है तो भी विकृति गोपुच्छा से व्यय संख्यात गुणा प्राप्त होता है। कितने गुणा होगा? नाना गुणानी शलाका एक से कम हो गए। अभी अभी हमारे उदाहरण में देते ना, ये चार गुना, ये चार यानी सोलह गुना थी, सोलह गुना थी है ना, इससे ये सोलह गुना था, उसको हमने असंख्यात गुना कह दिया था। अब नाना गुणानी शलाका एक कम हुई, तीन हो गई, तो अन्य अभ्यस्त राशि उन्नीस हो गई, तो भी इससे कितने गुना हो गए? अभी तीन का तीन के तीन किसके अर्धच्छेद है?
संख्यात के, संख्यात वैल्यू के अर्धच्छेद।
तीन ओरिजिनल तीन जो संख्या है उसके अर्धच्छेद कितने हो गए? उस तीन जिसके अर्धच्छेद है वो राशि कितनी है? आठ। तो अन्य अभ्यस्त राशि आठ गुना होगी इससे, आठ गुना, पहले इसके सोलह गुना थी,
वो आधा हो गई
नेचुरली। अन्य अभ्यस्त राशि सॉरी नाना गुणानी एक कम हुई है ना, क्या कितने बार दो थे उसमें से एक दो कम हो गया, यानी अन्य अभ्यस्त राशि आधा हो जाती है। जहाँ नाना गुणानी शलाका एक से कम होती है अन्य अभ्यस्त राशि आधी हो जाती है, वहां जघन्य परिता संख्यात गुणी थी, अब आधा जघन्य परिता संख्यात गुणा रह गए, यानी उसका अर्थ संख्यात गुणा रहेगी कि नहीं? ये कुछ ख्याल में आई बात? ये देखो फिर से पढ़ो, हमारा पक्का हो जाएगा ना?
नहीं नहीं, कल वापस देख लेंगे एक बार।
अरे अभी 10 मिनट है, अभी भी देखो वापस के थक गए इतने में।
नहीं नहीं, कल भी वापस ले लेंगे।
हाँ, हाँ, नहीं नहीं, अभी थोड़ा इनका जो गया ना वो देखेंगे।
नहीं, अभी तो करते हैं, वापस कर लेंगे।
यहाँ क्या बात हुई, ये है हमारा 65536, हमने गुण संक्रमण भागार मान लिया है, उसकी जो अर्धच्छेद कितनी है राशि? 16। अब कहते दुरापकृष्टि होने के बाद और भी आगे बढ़ गया जीव, तो अभी कम होते होते नाना गुणानी शलाका उसकी कितनी रह गई? तो कहते यहाँ जो 16 हमने जघन्य परिता संख्यात मान लिया है उसके अर्धच्छेद 4 है, तो इसकी गुणहानि कितनी रहेगी? तो 16 में 4 ज्यादा है, 16 में 4 ज्यादा है, तो जितनी गुणहानि होती है नाना गुणहानि उतने प्रमाण में अन्योन्य अभ्यस्त राशि होती है, उतने दो लिखकर आपस में गुणा करो, तो यहाँ 16 प्लस 4 हमारी नाना गुणहानी 20 हुई, तो ओरिजिनल राशि कितनी होनी चाहिए? ये जो गुण संक्रमण भागार है उससे 16 गुना हो जाएगी, क्योंकि इतने अधिक है ना उसमें, जितने यहाँ अधिक होते हैं अर्धच्छेद, उसकी ओरिजिनल राशि को उससे गुणा करना है। तो गुण संक्रमण भागार से ये यहाँ की अन्य अभ्यस्त राशि कितने गुणा है? तो जगन्य परिता संख्यात गुणा है, गुणा अन्य अभ्यस्त राशि। और हमें विकृति गोपुच्छा कैसे आती है? गुण संक्रमण भागार से गुणा करेंगे तो गुण संक्रमित द्रव्य आएगा, और यहाँ अन्य अभ्यस्त राशि से भाग, इससे भाग देंगे तो गुण संक्रमित, गुणा नहीं भाग देंगे तो, और ये अन्य अभ्यस्त राशि से भाग देंगे तो अपकर्षित, यानी वो स्थिति कांडक के द्वारा नीचे आया हुआ विकृति गोपुच्छा का प्रमाण आएगा। तो अब भी ये इससे कितने गुणा है? जघन्य परिता संख्यात गुणा है। ये बात यहाँ तक ख्याल में? अब कहते हैं ये चार के बदले एक गुना, नाना गुणानी एक से भी कम हो जाए, तीन हो जाए, तो नाना गुणानी कहीं पर ले लो आप, हम 5 बार 2 संख्या लिखते हैं समझाने के लिए। और नाना गुण तो ओरिजिनल द्रव्य कितने आएगा? 32, ज्यादा नहीं, 4 बार ले लो ना, आसान है आपको,
16 बार 16।
उसमें 1 2 कट किया तो क्या होगा? अरे उसका भाग देंगे ना हम, 1 2 कम करना है ना, उससे जो ओरिजिनल संख्या थी अन्य बसी वो आधी होती है, जहाँ नाना गुणहानी एक कम एक से कम होती है ओरिजिनल संख्या आधी होती है। तो पहले हमारे 16 गुना थी, अब 4 के बदले, यानी ये हमारे 16 प्लस 4 20 थे नाना गुणहानी, उसके बदले 19 हुई, तो कितना होगा? ये 16 गुना के बदले 8 गुना हो जाएगा। पहले हमने कितने गुना देखा था? जघन्य परिता संख्यात गुना, यानी असंख्यात गुना था, अब जघन्य परिता संख्यात का आधा हुआ,
यानी
तो विशिष्ट संख्यात ही हो जाएगी ना, तो संख्यात गुना है, यानी अभी भी वो संख्यात गुना ही रहेगा। अभी एक 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 नाना गुणानी कम करते जाओ, जब इसके अर्धच्छेद और उसके अर्ध वो नाना गुणानी समान हो जाएगी तब इक्वल हो जाएगा।
तो ये दुर्लभ दृष्टि में एक ही बार असंख्यात पापा अरे असंख्यात गुणा द्रव्य जाता है कि नहीं, वो कांडक
नहीं, वो बहुत बार हो रहा है। देखो
दुरापकृष्टि स्थिति सत्कर्म के रहते हुए,
दुरापकृष्टि स्थिति कर्म के रहते हुए, ये फिर पढ़ेंगे पैराग्राफ। स्थिति कांडक के लिए स्थिति के असंख्यात बहुभाग को ग्रहण करता है और बाकी स्थिति पल्ले के असंख्यात में भाग रहती है, बराबर। उसमें यदि यदि डाला, यानी ऐसे बहुत बार होता चले जाए, उसमें यदि जघन्य परिता संख्यात की अर्धच्छेद शलाकाओं से अधिक गुण संक्रमण भागार के अर्धच्छेदों की शलाका प्रमाण नाना गुणहानी शलाकाएं होती है तो भी, इतनी जो नाना गुणहानी शलाका है कितनी से अधिक है? जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद से अधिक है, तो ओरिजिनल राशि कितने गुना होगी? जघन्य परिता छेद, हाँ, जघन्य परिता संख्यात गुना होगी, है ना? तो भी आय से अर्थात विकृति गोपुच्छा के द्रव्य से वे अर्थात गुण संक्रमण के द्वारा पर प्रकृति को प्राप्त होने वाला द्रव्य असंख्यात गुना हुआ, क्योंकि व्यय का गुणकार जघन्य परिता संख्यात प्रमाण पाया जाता है। नाना गुणहानी जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण उसके अर्धच्छेद से ज्यादा है, तो ओरिजिनल राशि यानी अन्योन्य अभ्यस्त राशि जघन्य परिता संख्यात गुणा है, यानी यहाँ का भागाहार असंख्यात गुणा है, आय का भागाहार असंख्यात गुणा है, तो व्यय की संख्या असंख्यात गुणा होगी, व्यय का द्रव्य। तो इसमें हमने दो सूत्र देखे, कैसे कि अर्धच्छेदों का जो जोड़ है वहां मूल राशियों का गुणकार होता है, और दूसरी बात आय का भागहार जहां जघन्य परिता संख्यात गुणा है इसलिए व्यय का द्रव्य जघन्य परिता संख्यात गुणा हो गया। ये बात ख्याल में आई? अब आगे पढ़ेंगे। और यदि उसमें उक्त नाना गुणहानी शलाकाएं एक कम होती है, एक कम हुई ना तो अन्य अभ्यस्त राशि आधी हो गई, आदि होती है, तो कितनी से आदि हुई? जगन्य परिता संख्यात गुणा थी, वो अभी संख्यात गुणा रह गई, जगन्य परिता संख्यात से आदि हो गई गुणा गुणा में, तो भी विकृति गोपुच्छा से व्यय संख्यात गुणा प्राप्त होता है। संख्यात गुणा ने कितना? जगन्य परिता संख्या डिवाइडेड बाय 2, उसको संख्यात ही कहेंगे ना, क्योंकि तब व्यय का गुणकार जगन्य परिता संख्यात से आधा पाया जाता है। ये बात ख्याल में आई थोड़ा? इसलिए हाँ उसके नाना गुना नीति नहीं होती है। इसी प्रकार आगे भी संख्यात गुण वृद्धि को जानकर कहना चाहिए। अब उसमें और नाना गुना नहीं, और एक कम हो गए तो जगन्य परिता संख्यात का चौथा भाग होगा, जगन्य परिता संख्यात का आठवां भाग होगा, इस तरह से वहां बढ़ाना है ना। यदि शेष स्थिति में गुण संक्रमण भागहार के अर्धच्छेद प्रमाण नाना गुणानी शलाकाएं होती है, तो अभी देखो यहाँ की नाना गुणानी का अर्धच्छेद हमने 16 मान लिया है, और हमारी गुणहानियां भी 16 हो जाए, तो यहाँ का गुण संक्रमण भागहार भी 85 हुआ और नाना गुणहानी भी 16 है, तो उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि भी 85 प्रमाण हुई। तो जितना गुण संक्रमण भागहार है उतनी अन्योन्य अभ्यस्त राशि हुई, तो जितना आय है उतना ही व्यय होगा। पहले तो कितना व्यय असंख्यात गुणा होते 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 दुरापकृष्टि हुई, उसके बाद भी बाद फिर संख्यात गुणा तक आ गया, और ऐसे बहुत बार होने के बाद फिर अभी समान हो गया। देखो शेष स्थिति में गुण संक्रमण भागहार के अर्धच्छेद प्रमाण नाना गुणानी शलाकाएं होती है, तो विकृति को पूछा वे के समान होती है, यानी कहां तक जाके अभी समान हो गए विकृति को पूछा।
तो ये विकृति को पूछा में सभी द्रव्य मिलके लेना है।
हाँ, जितना नीचे आया है उसके, क्योंकि दोनों जगह भाज्य और भागहार समान पाए जाते हैं। यह तो हुआ स्थूल अर्थ, किंतु सूक्ष्म स्थिति को देखने पर यहाँ भी आय से व्यय विशेष अधिक है, क्योंकि अतिक्रांत विकृति गोपुच्छा के साथ प्रकृति गोपुच्छा को गुण संक्रमण भागहार से भाजित करके उसमें से एक भाग का पर रूप से गमन पाया जाता है। क्या कहते हैं? अब जहाँ विकृति गोपुच्छा ऑलरेडी बनी है, स्थिति कांड घात होते होते आए हैं, तो ओरिजिनल जो प्रकृति गोपुच्छा है उसके साथ अभी जो विकृति गोपुच्छा है उसमें से भी व्यय द्रव्य होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अभी यहाँ जो बनी है उसको भाग दे के संक्रमण होगा, इसलिए वहां भी व्यय थोड़ा ज्यादा होगा। अब यदि वहां पर गुण संक्रमण भागहार के रूपोन अर्धच्छेद प्रमाण नाना गुणानी शलाकाएं होती है, तो क्या कहते हैं? अभी तक तो 16 से ज्यादा थी, अब रूपोन है ना एक कम, यानी अभी अभी यहाँ की नाना गुणानी शलाकाएं 15 होगी, तो यहाँ का द्रव्य कितना होगा? पनट्टी का आधा। हाँ, ये ख्याल में, क्योंकि यहाँ नाना गुणानी और एक कम हो गई, तो यहाँ का द्रव्य, यहाँ का भागहार आधा हुआ, अन्योन्य अभ्यस्त राशि आधी हुई,
तो द्रव्य दुगुना,
अभी इसका द्रव्य डबल होगा। हाँ। ये भागहार आधा हुआ है, इस भागहार से ये भागहार आधा हुआ,
तो द्रव्य डबल होगा।
हाँ, तो अभी विकृति गोपुच्छा का द्रव्य दुगुना हो जाएगा। ख्याल में आई ना बात? हाँ। देखो यदि वहां पर गुण संक्रमण भागहार के रूपों ने एक कम अर्धच्छेद प्रमाण नाना गुणा निशलाकाय होती है, तो व्यय से विकृति गोपुच्छा कुछ कम दुगुनी होती है। अब दुगुनी इसलिए नहीं कहा क्योंकि व्यय थोड़ा अधिक होता है ना, इसलिए कुछ कम दुगुनी बताया। ये बात ख्याल में आई? क्योंकि अभी नाना गुनहानी इससे एक इसके अर्ध छेद से ये एक कम है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो उतनी रहेगी पनट्टी, और 15 की कितनी हो जाएगी ओरिजिनल पनट्टी का आधा हो जाएगा। नाना गुनहानी में से एक कम कर दिया ना, एक दो कम कर दिया हमने, तो वो आधा हो जाएगा प्रमाण, अन्योन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण आधा हो जाएगा। यहां से लेकर सर्वत्र क्या बताया, विकृति को पूछा व्यय से अधिक ही है। अभी तक हमने उसको असंख्यातवे भाग से शुरू किया था देखना, ऐसे करते 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 फिर मिनिमम असंख्यात गुना रह गया, वो द्रव्य यहाँ का व्यय का द्रव्य, फिर घटते घटते दोनों समान हुए, अब यहाँ ये बढ़ते ही हैं। विकृति को पूछा से व्यय अधिक है, व्यय से अधिक हो जाती है। विकृति को पूछा यानी आय व्यय से अधिक हो गई यहाँ से, अब यहीं रुकते हैं हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। दोषी सर।